चतुर्थ खंड, पुरुष और परिस्थिति। एकांत शेखर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उसे होश हुआ तब से वह प्रत्येक बात में अकेला ही रहने का अभ्यस्त था, और यह भी कहा जा सकता है कि तब से वह अपने पर ही निर्भर करता आया था। लेकिन मद्रास जैसे बड़े शहर में आकर उसे एकाएक लगा वह बहुत अकेला है। उसकी आयु तब कुल 15 वर्ष की थी, और इन 15 वर्षों में वह कभी घर की छाया से बाहर भी नहीं निकला था। व्यक्ति का जो भीतरी हिस्सा है वह आत्मा का क्षेत्र है, उसमें वह सदा अकेले रहा था। उसमें उसने किसी को नहीं आने दिया था, या कम से कम उसमें कोई आया नहीं था, और किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता उसकी आत्मा ने इसलिए नहीं जानी थी। लेकिन दूसरी ओर उसे कभी चिंता नहीं थी कि वह खाएगा क्या, पहनेगा क्या, खर्च क्या करेगा और बचाएगा क्या। उसे ऐसी छोटी बातों पर चिंता करने का अवसर ही नहीं हुआ था। अपना काम चलाने की नौबत ही नहीं आई थी, और कभी उसके पास थोड़े ही पैसे नहीं हुए थे कि वह उनके खर्च पर किसी तरह का भी नियंत्रण करना जानता। उसे पैसे केवल 2 बार मिले थे। एक बार एक अठन्नी, जिसे उसने खुशी खुशी 10 पैसे की एक सीटी के लिए दे डाला था, और दूसरी बार जब उसके बड़े भाई ईश्वर ने सिगार पीने के लिए पैसे चुराए थे और चोरी पकड़े जाने पर कुछ देर के लिए उसके पास जमा कर दिए थे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए वह लाहौर गया था अवश्य, लेकिन वहाँ मास्टर साथ था, और फिर वहाँ वह मौसी विद्यावती के कारण या जान नहीं पाया था कि वह घर से बाहर है। विद्यावती उसकी सगी मौसी नहीं थी, लेकिन किसी ने कब उसमें सगेपन की कमी का अनुभव किया था। उनमें वह क्षमता थी कि सभी उसे अपना सगा जानते थे, और फिर माँ से अधिक शशि ने भी वहाँ रहना शेखर के लिए सुखकर बना दे रखा। वह शशि जो उससे छोटी थी और नहीं थी, जो उसके साथ कभी खेलती नहीं थी, पर उसकी सखी बनती जा रही थी। रिक्शा में बैठकर कॉलेज की ओर बढ़ता हुआ शेखर यही सब सोच रहा था, और उसका अंतस्तल घबराहट से भर रहा था। कैसा होगा कॉलेज, कैसा होगा बोर्डिंग, कैसे लड़के नौकर, रसोईया, खाने का ढंग, रहने का कमरा, और उस दिन मौसम भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। वह भी मलिन था, जून का महीना था, आकाश में खूब बादल छाए हुए थे, ना बारिश थी ना हवा, गर्मी बड़ी सख्त थी, और शेखर पहाड़ पर से आ रहा था। कॉलेज में नाम लिखा कर फीस चुरा कर अर्थात फीस चुका कर हॉस्टल में अपने कमरे में सामान रख कर शेखर बिस्तर बिना खोले ही उसे चारपाई में डालकर धप से उस पर बैठ गया, और छुटकारे की लंबी सांस लेते हुए बोला, हफ। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, रामा, एक और नया जानवर आ गया है। शेखर ने नहीं समझा कि इशारा उसी की ओर है, फिर भी उसने 2-3 जनों के आने की आहट सुनी और जैसे प्रतीक्षा में रहा। 3 लड़के उसके कमरे में आए। शेखर कुछ सजंस सा उनकी ओर देख ही रहा था कि प्रश्नों की बौछार हुई, आप कहाँ से आए, कौन से स्कूल से पास किया है, क्लास कौन सा है, आपका नाम। शेखर से ये प्रश्न एक एक करके पूछे गए होते तब भी वह उत्तर ना देता, क्योंकि एक तो उसे उनका लहजा अच्छा नहीं लगा, दूसरे इस प्रकार के प्रश्नों से वह कुछ सकुचाता भी था। वह कुछ नहीं बोला, उनकी ओर देखता रहा। आप बोलना नहीं जानते क्या, एजी फर्स्ट ईयर में होंगे, तभी तो नवाब तो नहीं है, है तो आदमी ही आखिर। वाह भाई, खूब पहचाना आदमी, तभी तो तुम्हें भी आदमी ही कहना पड़ेगा, क्यों ना। शेखर ने कहा था, मैं थका हूँ, मुझे आराम करने दीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। अच्छा, यूँ है बात, चलो भाई इन्हें आराम करने दो, थके हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। तो हम क्या आपकी टांग पकड़े हैं, कीजिए आराम, भला या भी कोई सराफत है। अरे भाई, नाम ही तो पूछा है, कोई खा तो नहीं जाएंगे। शेखर ने क्रुद्ध होकर कहा, निकल जाइए आप सब मेरे कमरे से। एक ने कहा, ओफो। लेकिन उसकी मुख मुद्रा की ओर देखकर तीनों बाहर चले गए। जो आलोचनाएं उनके मुंह पर आई वे बाहर जाकर ही प्रकट हो सकी। शेखर उनको ना सुनने की चेष्टा करते हुए दीवार की ओर मुंह करके लेट गया, पर उसकी अनसुनी ना हो सकी। शेखर का मन बहुत उदास हो गया। वह अनजाने में इस स्वागत की तुलना उस स्वागत से करने लगा जो उसे लाहौर में प्राप्त हुआ था। शशि की बड़ी बड़ी भोली आंखें, उसका वह एक हाथ में दिया थामे दोनों हाथ आधे जोड़कर प्रणाम करना और उसकी वह साग्र अवज्ञा और कई बातें, उसे लगने लगा जैसे माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है, उसको निर्वासित किया है, क्योंकि वह उनके निकट अपराधी था, क्योंकि वह सदा से अवज्ञाशील था, क्योंकि वह अपनी माँ से इसलिए घृणा करता था कि वह विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पिता पर उसका स्नेह इसलिए टूट गया था कि पता नहीं क्या उसकी आस्था रही किस पर थी, किसी पर भी तो नहीं। और जिन जिन को वह मान सकता था, जिन जिन का वह आदर कर सकता था, वे सब उसके सामने कितने घोर अपराधी हो गए थे उस समय। जबकि उसने वह पुस्तक पढ़कर जाना था कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, किस जघन्य पाप कर्म से उसके माता पिता भाई बहन, वह भी शशि और वहाँ शारदा भी सभी उसी पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वह गलत है, घृणित है, पापमय है। तब ईश्वर ने स्त्रियाँ तब स्त्रियाँ बनी क्यों हैं क्यों? शेखर को लगा कि स्त्रियाँ जब है तब उन्हें स्वीकार करना ही होगा, लेकिन क्यों है वो? लेकिन और उसे याद आता, यद्यपि स्त्रियां होने के कारण उसे इतना स्पष्ट इतना कष्ट हुआ कि फिर भी यदि स्त्रियां ना होती तो शायद वह जी नहीं सकता। क्या यह आवश्यक है कि स्त्रियों को एक ही दृष्टि से देखा जाए, एक ही प्रश्न उनसे पूछा जाए? उनसे कहीं पढ़ा था कि डाकू जब किसी नए आदमी से मिलते हैं तब यही सोचते हैं कि यह हमारा मित्र है या शत्रु, हमारे पाप कर्म में सम्मिलित होगा या उसमें विघ्न डालेगा। क्या यह जरूरी है कि स्त्रियों की ओर उस डाकू वृत्ति से देखा जाए, समझा जाए कि तो वे एक पाप कर्म विशेष में पुरुषों की संगिनी है या पुरुषों के शत्रु है, भयंकर है? पुरुषों का स्त्रियों के संसार में स्त्रियों के बिना नहीं जी सकता। वह बहुत अकेला है। इतने बड़े मद्रास शहर में, इतने भीड़ भड़क्के में वह पहली बार बिल्कुल अकेला धंस आया था। और यहाँ सब और विरोध उपेक्षा ही है। यहाँ पुरुष है जो विरोधी है, और वह चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है, या तो नहीं चाहता कि कोई कोई स्त्री वहाँ उपस्थित हो, लेकिन चाहता है पता नहीं क्या। वह चिंतित सी तुंद्रा में ऊँगने लगा। किसी घबराहट का शब्द सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। द्वार पर एक युवक खड़ा था और भीतर आने की अनुमति पाने की प्रतीक्षा में था। उसके चेहरे पर एक विनयपूर्ण मुस्कुराहट थी। शेखर ने कहा, आइए, और इधर उधर देखने लगा कि उसे बैठने के लिए कौन सा स्थान इंगित करे। उसने पास आकर शेखर के ट्रंक पर बैठते हुए कहा, चिंता नहीं, मैं मैज में हूँ। आपका नाम CH पंडित है? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, और कुछ कुतूहल से युवक का अवलोकन करने लगा। युवक का चेहरा सुंदर था, आंखें सुडोल, स्वच्छ नीली, प्रायः हंसती हुई नाक सीधी और छोटी, ओठ पतले, लंबे और चंचल, सिर पर लंबे लंबे घुंघराते हुए बाल थे जिन्हें उसे ढंग से काल रखा था। दाढ़ी मोज उसके पास नहीं थी, अभी फूट भी नहीं रही थी। कद और गठन से भी 14-15 वर्ष से अधिक नहीं जान पड़ता था। शेखर कुछ पूछने ही को था, युवक ने कहा, मेरा नाम कुमार, आपके नाम से CH से क्या अभिप्राय है? चंद्रशेखर। अच्छा, मेरे बड़े भाई का नाम यही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में भर्ती होने आया हूँ। ओहो, तब तो हम साथ ही हैं, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। शेखर को कुछ और विस्मय हुआ यह देखकर कि इस लड़के में जरा भी संकोच या घबराहट नहीं प्रकट होती। यद्यपि वह भी कॉलेज में आ रहा है, बोला, या तो अच्छी बात हुई। उस लड़के ने पूछा, आपने सारा बोर्डिंग देख लिया, कुछ परिचय प्राप्त किया? नहीं तो मैं कुछ भी नहीं जानता और थका भी हूँ। अच्छा, तब रहने दीजिए, आप चाहे तो मैं आपको मिला लाऊं, मैं प्रायः सभी को जानता हूँ। शेखर ने चाहा पूछूं कैसे, पर चुप ही रहा। फिर उसे विचार आया, बिना इसकी सहायता के मुझे शायद बहुत कठिनाई होगी, फिर यह भी कि मुझे कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। बोला, अगर आप कुछ ठहर कर चले तो मैं चलूँगा। आपको कष्ट तो होगा, मुझे स्वयं आपसे ही बात करने का अधिक मोह है, इसलिए कहता हूँ कि औरों से ठहर कर मिल लेंगे। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ मिस्टर कुमार। नहीं, सो क्या, और आप मिस्टर कुमार क्यों कहते हैं? सहपाठियों भी मिस्टर का बंधन लगा तो मिस्कुल मुश्किल है, केवल कुमार कहिए ना, सभी कहते हैं। शेखर ने कहा, अच्छा तो कुमार। फिर कुछ रुक कर बोला, आप पहले व्यक्ति है यहाँ जिसे मुझसे शिष्टता का बर्ताव किया है। कुमार हंस दिया। शेखर का मन इस युवक के प्रति कृतज्ञता से भरता गया। एकाएक उसे लगा कि मद्रास में यदि या ना होता तो शायद उसे कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता। कुमार ने उससे बातें करने के सिवाय कुछ नहीं किया था, फिर भी जिस अवस्था में शेखर था उसमें उसे लगा कि उन बातों पर उसका मुख सुख और जीवन पर निर्भर है, और वही कुमार ने उसे दिया। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि वह कुमार से अपने घर की बातें, अपने घर की पढ़ाई, अपना अकेलापन, अपनी व्यवस्था, सब कुछ कह रहा था। उसके विश्वासी हृदय ने कुमार को अपना भाई मान लिया था। वह अकल्पनीय भाई जो उसे घर में नहीं मिला था और उसका स्थान बहने किसी प्रकार कभी भी नहीं भर सकी थी।